તારીખ 21/9/1991 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 449 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 531.
સ્વસ્વરૂપનું લક્ષ્ય થતા લક્ષ્ય પહેલા થાય છે. સ્વસ્વરૂપનું લક્ષ્ય થતા લક્ષ્ય આવતા ફાગણવદ દશમ અને સોમવારે બપોરે આ સમય છે. લક્ષ્ય ચાલુ છે. સ્વસ્વરૂપનું લક્ષ્ય આવતા ફાગણવદ દશમ અને સોમવારે બપોરે જ્ઞાતાધારાની વૃદ્ધિ થતા, એટલે લક્ષ્ય જ્યારે થયું ત્યારે જ્ઞાતા પણ હું જ્ઞાતા છું એ સંબંધીનું ભેદ જ્ઞાન છે. એ ભેદ જ્ઞાનમાં લક્ષ્યપૂર્વક એક પરિણતિ ચાલુ થઈ જાય છે, જેને સ્વરૂપ મહિમાની પરિણતિ કહી શકાય. સ્વરૂપ લક્ષ્ય થાય ત્યારે સ્વરૂપ મહિમા તીવ્ર થઈ જાય, અસાધારણ સ્વરૂપનો મહિમા જાગૃત થાય અને એની પરિણતિ પણ ચાલુ થઈ જાય. કેમ કે ઉપયોગ તો પાછો ઉદયની અંદર ઉદયના કાર્યોમાં જતો હોય છે અને લક્ષ્ય થયા પછી કેટલાક દિવસો અનુભવ થવામાં લાગી જાય છે. એ દિવસો દરમિયાન જે ઉદય કાર્યોમાં ઉપયોગ જાય છે, આપકો ગુજરાતી મેં સમજમાં આવ્યો, થોડા હૈ ગુજરાતી વાળા તો ક્યાં હોય કે સ્વરૂપ નિશ્ચય કે કાલ મેં સ્વરૂપ લક્ષ્ય હો ગયા. ઓર સ્વરૂપ લક્ષ્ય હોતે હી સ્વરૂપ કી અપૂર્વ મહિમા ઇતને જોર સે એ મહિમા ચલતી હૈ કે ઉસકે પરિણતિ બન જાતી હૈ. પરિણતિ બન જાતી હૈ તબ ઉપયોગ ઔદયિક ભાવ મેં ઓર ઔદયિક પ્રસંગો મેં ઉપયોગ ઉપર ઉપર સે ચલતા હૈ ઓર પરિણતિ તીવ્રતા સે સ્વરૂપ મહિમા કી ચલતી હૈ. ઇસમેં સ્વરૂપ કી મહિમા એસા એસી બન જાતી હૈ. ગુજરાતીમાં આપણે એમ કહી શકીએ કે સ્વરૂપનો મહિમા ઘર કરી જાય છે. જૈસે કોઈ ઘર મેં પ્રવેશ કર કબજા લે લેતા હોય તો ફિર નિકલતા નહીં હૈ, તો ઘર કર લિયા ઉસને, હવે ઉસકો નિકાલ નહીં પાએંગે. એસા સ્વરૂપ કા મહિમા લક્ષ્ય કે કાલ મેં બન જાતા હૈ, ઉસકી એક પરિણતિ ચાલુ રહેતી હૈ. ઉસમેં ઉસકા મુખ્ય મહિમા કો દર્શાવે તો મેં જ્ઞાતા હું, નાતા દ્રષ્ટા હી હું અસ્થિ રૂપ સે. નાસ્તિ ઇસમે આ જાતી હૈ કે રાગ દ્વેષ કરને વાલા નહીં હું. એસી એક પરિણતિ કો જ્ઞાતાધારા બોલતે હૈ, ક્યોંકિ સ્વસન્મુખતા હી હૈ. તો એસી સ્વસન્મુખતા મેં વૃદ્ધિ હોતે ઉસ સ્વરૂપ કા ધ્યાન હોતા હૈ, ફિર એકાગ્રતા હોગી અનુભવ કે કાલ મેં. ઉસમેં એકાગ્ર હોને હોતે ઉસ સ્વરૂપ મેં વેગ, વેગ મેને પુરુષાર્થ સંવેગ, સ્વરૂપ મેં વેગ તીવ્રતા સે આયા ઓર ઉપયોગ પર લક્ષ્ય સે છૂટા પડ કરકે અપને સ્વયં કે સ્વસ્વરૂપ મેં સ્થિર હોકર ચૈતન્ય ભગવાન વહ સ્વરૂપ કો અનુભવતા થા, ક્યોંકિ ભૂતકાળ કી બાત લિખી ને જો લિખાવટ કિયા હૈ વો ચૈત્ર મહિને મેં કિયા હૈ, પર વો તો અનુભવ કે બાદ મેં ઉસકી બાત તો લિખી જાતી હૈ, અનુભવ મેં તો કોઈ લિખને કા પ્રસંગ હી નહીં બનતા, પર હોતા હૈ ભી ક્ષણવર્તી વો તો, ઇસલિયે બાદ મેં એસા લિખા કે એસા હુઆ એસા હુઆ એસા હુઆ એસા હુઆ કરકે જબ પુરુષાર્થ કી ઉગ્રતા હો ગઈ મેને વેગ, તો ઉપયોગ જો પદાર્થ મેં યા વિકલ્પ મેં થા વહાં સે છૂટકર સ્વયં કે સ્વસ્વરૂપ મેં સ્થિર હો ગયા, તો ભાષા બદલ દી મિત્ર. અભી તક બાત પર્યાય કે લીએ લિયા થા, એસા હુઆ એસા હુઆ એસા હુઆ પરિણમન મેં, અબ શૈલી બદલ ગઈ, યહાં સે દ્રવ્ય કી બાત લે લેતે હૈ. ક્યા વિશિષ્ટતા હૈ ઇસમેં કે જબ સ્થિર હો ગયા ઉપયોગ, તો ઉસ વક્ત ચૈતન્ય ભગવાન મેને આત્મા અભી પરિણામ નહીં લિયા, ચૈતન્ય ભગવાન ઉસ સ્વરૂપ કો અનુભવ થા થા, ભગવાન અપને સ્વરૂપ કો અનુભવ કરને લગ ગયા. પર્યાય મેરે સ્વરૂપ કો અનુભવ કરને લગ ગયા નહીં, મેં અપને સ્વરૂપ કો અનુભવ કરને કો લગ ગયા. ભાષા બદલ ગઈ વાં અભેદતા થઈ ગઈ બરાબર છે, પણ પર્યાયમાં આમ થયું પર્યાયમાં આમ થયું પર્યાયમાં આમ થયું એમ કહેતા જ્યારે અનુભવ થયો ત્યારે એમ કીધું કે ભગવાન પોતાના સ્વરૂપને અનુભવવા લાગ્યા. ફાગણ વદ દસમ કી દોપહેર કો એસા હુઆ અવસ્થા મેં એસા હુઆ પર્યાય મેં, ફિર જબ ધ્યાનસ્થ અવસ્થા મેં લીનતા એકાગ્રતા હુઈ, તબ ભગવાન ખુદ અપને સ્વરૂપ કો અનુભવતા થા. ક્યા હોતા થા ઉસ વક્ત કે ઉપયોગ પર સે છૂટા પડ ગયા, તો અપને સ્વરૂપ સ્વસ્વરૂપ મેં સ્થિર હો ગયા, તો મેરા ચૈતન્ય ભગવાન મેને મેં ચૈતન્ય ભગવાન સ્વરૂપ કો ઉસ દિન અનુભવ કરતા થા, અપને સ્વરૂપ કો ભગવાન અનુભવ કરને કરતા થા. સ્થિર ઉપયોગ મેં ક્યા હુઆ કે અનુભવ હુઆ, ભગવાન કો અપને સ્વરૂપ કા અનુભવ હુઆ, એસા કહા. દેખો ક્યા ભાષા પ્રયોગ હુઆ હૈ, ઓર વો ભગવાન અપના નિર્વિકલ્પ સહજ સ્વરૂપ મેં વો રમણતા ખેલી રહ્યા થા, રમણતા કર રહા થા, અપને સ્વસ્વરૂપ મેં ભગવાન ખેલતે થે. બધા ગુણો તો સ્વભાવમાં છે, પણ દ્રવ્યની પ્રધાનતાથી કથન કરે છે, પર્યાયની પ્રધાનતાથી કથન નથી કરતા. હા એમ લીધું, દ્રવ્ય પોતાનો અનુભવ કર્યો એમ લીધું. શું પર્યાયમાં અહમ પણ છૂટી ગયું ને, અને દ્રવ્યમાં અહમ પણ આવ્યું, અને પર્યાય પણ દ્રવ્યાકાર થઈ સ્વરૂપાકાર. પર્યાય કેસા હુઆ, સ્વરૂપાકાર હો ગઈ. તો પર્યાય મેં જો અનાદિ સે અહમપણા થા વો મટ ગયા, દ્રવ્ય મેં અહમપણા ચાલુ હો ગયા, તો દ્રવ્ય હૈ વો અપને સ્વરૂપ કો અનુભવ કરને લગા ભગવાન, ઓર વો અપને સ્વરૂપ મેં સહજ સ્વરૂપ મેં વો ખેલને લગ ગયા, ભગવાન સ્વયં અપને સ્વસ્વરૂપ મેં ખેલને લગ ખેલતા થા, મતલબ ખેલી રહ્યા હતા, મેને ખેલતા થા ઉસ દિન, ઓર રમી રહ્યા હતા, રમણતા કર રહે થે, ભગવાન સ્વસ્વરૂપ મેં રમણતા કરતે થે. અનુપમ ઓર અદ્ભુત એસે એસા આત્મદ્રવ્ય કી મહિમા કોઈ અપાર હૈ, कुछ ऐसी अपार है कि जिसकी कोई पार नहीं पा सकते। वाणी में उतना सामर्थ्य नहीं है कि उसको कुछ कह सके। वाणी में कहने से मर्यादा हो जाती है, वास्तव में महिमा तो आए मर्यादित है। और चैतन्य देव, अपना चैतन्य देव आनंद तरंगों में डोलता था। उस दिन क्या होता था कि चैतन्य देव है वो आनंद तरंग में डोलता था। हाँ? બધું પ્રત્યક્ષ, સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ થઈ ગયું। હા, સ્વરૂપના સ્વરૂપનો ભાવ છે, ધ્રુવ ભાવ સ્વરૂપનો છે, અચળ ભાવ પણ સ્વરૂપનો છે અને અનુપમ સ્વરૂપનો છે। જે સિદ્ધ પર્યાયને લાગુ પડે છે તો મૂળ સ્વરૂપ જ સિદ્ધ પદ છે, પર્યાય તો પાછળથી થાય છે, આ તો આનાથી સિદ્ધ સ્વરૂપ છે એમ છે। संक्षिप्त में बेन श्री के अनुभव की नोंद है। શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 449। ये पत्र लंबा चौड़ा दिखता है लेकिन वास्तव में श्रीमद जी पोस्टकार्ड लिखने को बैठे थे। पोस्टकार्ड पूरा हो गया और लिखने की विचारधारा चालू रह गई तो दूसरा पोस्टकार्ड चालू कर दिया, फिर भी विचारधारा चालू रहेगी तीसरा चालू कर दिया। ऐसे 8 पोस्टकार्ड लिखा है। देखो आखिर का पैराग्राफ, आज ये 8वां पत्तू लिखिए छे, ये 8 पोस्टकार्ड लिखा है, 8 पोस्टकार्ड में एक पत्र पूरा किया है। लिखते ही गए, लिखते गए, एक लिखा फिर पूरा नहीं हुआ बात लिखने में, दूसरा फिर लंबा गया तीसरा, ऐसा धारावाही लिखावट चालू रहेगी। 8 पोस्टकार्ड लिखकर पत्र पूरा किया है। कृत्रिमता नहीं करते थे कब कि चलो ये पोस्टकार्ड में पूरा नहीं होता है अभी लिफाफा ले ले उसको फाड़ दे, वैसे नहीं, शायद लिखने में आ गया सो आ गया बस। तो एक दिन 8 पोस्टकार्ड लिख दिया एक ही आदमी को। वैराग्य आदि साधन संपन्न भाई कृष्णदास श्री खंभात, ये कृष्णदास भाई थे, तो मुमुक्षु थे और काफी वैराग्य संपन्न था, उनका वैराग्य अच्छा था। दूसरे मुमुक्षुओं में कृष्णदास भाई का वैराग्य जो है वो अच्छा था, मैंने योग्यता वाला मुमुक्षु था। शुद्ध चित्त से विदित की हुई तुम्हारी विज्ञप्ति पहुंची है। क्या कहते हैं कि तुमने कुछ विज्ञापन किया है, उसमें दिखता है कि तुमने शुद्ध अंतकरण से इसका निवेदन किया है। कितना भाव निकालते हैं, जिसका चिट्ठी आया है उसमें से वो बात निकाली है कि आपने जो बात लिखी उसमें अंतर से वो बात लिखी है, शुद्ध अंतकरण से लिखी है, ये अच्छा लक्षण है। मैंने अच्छी बात तो लोग करते हैं, लेकिन जैसे बात करे वैसा अंतकरण, शुद्ध अंतकरण होना और वैसे ही बात करना, दो प्रकार से बात बनती है। तो उन्होंने नोट किया है कि तुम्हारी जो बात है वो शुद्ध चित्त से निवेदित हुई है, वो अच्छी बात है। अब कहते हैं कि सर्व परमार्थ के साधन में परम साधन वह सत्संग है। क्या कहते हैं, आत्म कल्याण, परमार्थ मैंने आत्मा का कल्याण, आत्म कल्याण का जो भी जितने भी साधन बाह्य साधन शास्त्र में आता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उस सभी साधनों में सत्संग है वो परम साधन है, मैंने उत्कृष्ट साधन है। देखिए, आत्मकल्याण जिसको करना है उसको सत्संग है वो उत्कृष्ट साधन है बाहर में, फिर दूसरे दूसरे साधन इसके नीचे की कोटि के हैं, अनुत्कृष्ट है, उत्कृष्ट तो सत्संग ही है। इसलिए मुमुक्षु जिसको आत्मकल्याण करना हो उसको दूसरा कुछ नहीं हो सके, संजोग वसात इतना समय नहीं हो, उतनी शक्ति नहीं हो, उतनी अनुकूलता नहीं हो, तो दूसरा गौण कर देना लेकिन सत्संग को गौण नहीं करना, ये कहने का अभिप्राय है इसमें। क्योंकि ये परम साधन है, इसमें क्या बात है कि हमारे समाज में भी कई मुमुक्षु ऐसे हैं कि सत्संग को गौण कर देंगे, दूसरे साधन को मुख्य कर देंगे। दृष्टि भी होते हैं और स्वाध्याय भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, दूसरे दूसरे तो उपासादी क्रिया वगैरह अपने यहाँ कल्पना खास नहीं है। जहाँ तक हमारे समाज की परिस्थिति है उसमें भक्ति, पूजा और स्वाध्याय तीन बाह्य साधन चलता है, तो प्राधान्य किसको देना, ये बात आती है। गुरुदेव की उपस्थिति में भी गुरुदेव जी ने ये सूचना की थी, क्योंकि वहां भी पहले पूजा चलती थी, बाद में गुरुदेव का प्रवचन चलता था, तो कभी कोई पूजा में ऐसे रुक जाते थे कि प्रवचन में लेट हो जाते थे, देरी हो जाती थी। गुरुदेव का ध्यान गया कि अच्छा ये पूजा लंबाते हैं और प्रवचन में लेट आते हैं, तो चालू व्याख्यान में सूचना कर दे कि दो दफे स्वाहा कम कर देना। क्या बोले अपनी भाषा में, बे वक्त स्वाहा ओछो करवो, हूँ पर व्याख्यान में हाजर थी जब जब स्वाहा भले बे वक्त ओछो थे तो वांधो नहीं, हूँ पर व्याख्यान में टाइम सर आवी जब है वो कहना चाहिए, नाम पीछे से पूछ लेना। लेकिन बड़े बड़े लोगों को ऐसी सूचना की थी, मामूली आदमी को नहीं ऐसा बोले थे, मामूली मुमुक्षु को नहीं बोले थे, मुख्य को ऐसे बात करते थे कि बे वक्त स्वाहा ओछो करवो, व्याख्यान में टाइम सर आवी जाओ, एम मड़ू न करो। क्या कहने का मतलब है कि मूल्यांकन में फर्क नहीं होना चाहिए, जो भी प्रवृत्ति हम करते हैं उसका हमें मूल्यांकन होना चाहिए। मुख्य रूप से तो मुमुक्ष को स्वभाव होता है, ज्ञान की बात दूसरी है। तो स्वभाव में भी कौन सी क्रिया में स्वभाव उच्च कोटि का होता है इसका भी जिसको पता नहीं है, स्वभाव की कोटि का भी जिसको पता नहीं है वो तत्व ज्ञान में क्या समझेगा? उसको तो तत्व ज्ञान का सूक्ष्म विषय समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए हर ज्ञानी का अभिप्राय में कोई फर्क नहीं है, चाहे गुरुदेव कहे चाहे श्रीमद जी कहे। तो सत्संग है वो परम साधन है, उत्कृष्ट साधन है, दूसरा साधन उतना उत्कृष्ट नहीं है आत्म कल्याण के लिए। प्रतिक्रमण तो सच्चा ज्ञान दशा में होता है, मुमुक्षु को तो सच्चा प्रतिक्रमण होता ही नहीं, शुभ्भा होता है। अपना जो क्रमण की संकल्पना है उसमें मुख्यतया शुभ्भाव होता है, वो कोई सच्चा प्रतिक्रमण नहीं मानना चाहिए जो ज्ञान दशा में होता है, ऐसा तो होता ही नहीं। लेकिन शुभ भाव इसके माध्यम से कुछ शुभ भाव होता है, कितनी बात है। और सत्संग में भी सतपुरुष के चरण समीप का निवास ये परम साधन मैंने परम सत्संग है। मुमुक्षु मुमुक्षु के बीच में जो संग है वो सत्संग है, और सतपुरुष का संग है वो परम सत्संग है। सत्संग और परम सत्संग में उतना अंतर है। और मुमुक्षु में भी ऐसे अभिप्राय वाले मुमुक्षु होना चाहिए सत्संग में बैठने वाले आपस में, कि हम तो एक सिर्फ आत्म कल्याण का हेतु से संग करते हैं, आपस में हम तो हमारा संग जो है एक दूसरे का उसमें कोई अन्य हेतु नहीं है, न कोई हमको समाज का संबंध बढ़ाना है, न कोई हमारा व्यवहारिक कार्य का कारण है, न कोई आर्थिक कारण है, न कोई कौटुंबिक कारण है, न कोई सामाजिक कारण है, न कोई मान का कारण है, कोई कारण नहीं। क्या सत्संग में सिर्फ आत्म कल्याण की भावना और हेतु लेकर बैठना चाहिए तो ये सत्संग है वो आत्म कल्याण में निमित्त हो सकता है। इसमें अगर हेतु दूसरा हो गया तो वो सत्संग नहीं है, वो असत्संग हो गया। आपको सत्संग नहीं है मतलब असत्संग हो गया, तो वहां भी कोई अन्य हेतु से संग करे उनका संग नहीं करना चाहिए, संग छोड़ देना अच्छा है लेकिन असत्संग में जाना नहीं चाहिए। और सत्पुरुष का जो चरण समीप मैंने सामिप्य मिलता हो, सानिध्य मिलता हो, तो आत्मकल्याण के वांछुक जीवों को ये परम साधन है, इससे बढ़िया कोई साधन जगत में नहीं है। सर्वकाल में उसका दुर्लभपना है, यानी दुर्लभता है। ज्ञानी का सानिध्य मिलना ये सर्वकाल में सबसे दुर्लभ है, चौथे काल में भी दुर्लभ है, तो पंचम काल में तो दुर्लभ से भी दुर्लभ हो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। सभी काल में उसकी दुर्लभता है, और इस विषम काल में इसकी अत्यंत दुर्लभता ज्ञानी पुरुषों ने देखी है, जानी है कि इस विषम काल में तो इसकी अत्यंत दुर्लभता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों से ज्ञान में है। क्योंकि क्वचित ही ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी भी क्वचित ही होते हैं, अपनी मनुष्य की आबादी देखे 585 करोड़, उसमें 6 अरब करीब है, 6 ज्ञानी नहीं मिल पाएंगे, 1 अरब में एक नहीं मिल सकता है, 1 करोड़ में नहीं, 100 करोड़ में एक का एवरेज नहीं है। इतनी मनुष्य मनुष्य में ये स्थिति है, इसलिए उसकी बहुत दुर्लभता है, अत्यंत दुर्लभता है। अपने यहाँ अर्थशास्त्री होते ने, ये बंबई में है नानी पालथी वाला, उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसका एडवाइस लेने पर उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और 1 घंटे का एडवाइस का उसका चार्ज है कि तुमको 10,000 रुपया देना पड़ेगा। 1 घंटा अगर मेरे साथ तुम सिटिंग करेंगे तो 10,000 लगेगा, तो 1 घंटा नहीं लगे लेकिन 35 मिनट लगे तो 1 घंटा का मतलब फ्रैक्शन ऑफ द आवर उसका भी 10,000 लगेगा। क्या 1 घंटा का 10,000, 1 घंटा 10 मिनट हुई तो दूसरा 10,000, क्या 10 मिनट का फिर 15,000 नहीं लगे, उसका छठवां भाग नहीं लगे, पांचवा भाग नहीं लगे, चौथा भाग नहीं लगे, फ्रैक्शन ऑफ द आवर दूसरा हमारा घंटा चढ़ गया। इतना कड़क कंडीशन होता है, और ऐसे अर्थशास्त्री भी सारे विश्व में देखो तो 25-50 मिल सकता है, लेकिन सारे विश्व में ज्ञानी 5 नहीं मिल सकते, फिर भी ज्ञानी कभी भी चार्ज नहीं करते। ये ज्ञानी की निष्प्रता है, अंतरंग निष्प्रता ऐसी होती है कि ज्ञानी कभी अपने ज्ञान को बेचते नहीं है। ये अध्यात्म विद्या बेचने के लिए नहीं होती है, क्योंकि वो अमूल्य चीज है, इसका मूल्य कोई पैसों से या किसी चीज से भी होता नहीं है। इसलिए ज्ञानी को अनंत करुणावंत इसलिए कहने में आते हैं कि वो अमूल्य चीज को भी बिल्कुल मुफ्त में देते हैं, 1 पैसा नहीं चाहिए, देना चाहो तो भी नहीं चाहिए, लेने का तो सवाल है ही नहीं, डिमांड करने का तो प्रश्न है ही नहीं, लेकिन अगर कोई देना चाहे तो ना देंगे, लेने की बात नहीं है इधर। तो कितना अंतर है लौकिक परिस्थिति में और अलौकिक व्यवहार में, कितना बड़ा अंतर होता है। ऐसे ज्ञानी का, सत्पुरुष का योग होना इस काल में अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा ज्ञानियों ने जाना है। ज्ञानी पुरुषों की प्रवृत्ति प्रवृत्ति जैसी नहीं होती, ज्ञानी पुरुषों की जो प्रवृत्ति होती है बाह्य प्रवृत्ति, वो वास्तव में प्रवृत्ति जैसी नहीं होती है। वो खाते हैं पीते हैं, जो भी इनके भी पूर्व कर्म होते उसके उदय में उनकी प्रवृत्ति उदयाधीन होती है, फिर भी वो जगत के प्राणी जैसी नहीं होती। प्रवृत्ति जैसी नहीं होती इसका क्या मतलब, कि दूसरे लोग भी खाते पीते हैं, बोलते हैं, या कुछ भी अपना कारोबार व्यवसाय जो भी उदय है उसमें शामिल होते हैं, ज्ञानी की प्रवृत्ति दूसरे जैसी, दूसरा मामूली लोग जैसी प्रवृत्ति नहीं होती है। जैसे गर्म पानी में जिस तरह अग्नि अग्निपना का मुख्य गुण कह सकते नहीं, पानी कितना भी गर्म होवे फिर भी किसी को वो जला देते नहीं, पानी जला देते क्या, गांव बाड़ी सका पानी थी, एक चिंगारी होवे तो कितनी भी आग हो सकती है, और पानी टनबंदी गर्म होवे और सारे गांव को ऊपर छाड़ देवे उतना पानी होवे तो भी गांव गांव जलेगा नहीं, गांव को जला नहीं सकता वो। इसलिए पानी गर्म है, अग्नि भी गर्म है, लेकिन गर्म गर्म में फर्क है। अग्नि जला देगा, पानी से जलना नहीं होगा। ऊना ऊना गर्म पानी में जैसे अग्निपणा का मुख्य गुण नहीं कह सकते गर्म होते हुए भी, उस तरह ज्ञानी की प्रवृत्ति है। मैंने ज्ञानी को राग देखने में आता है और चारित्र मोह होने से मोह भी देखने में आता है, द्वेष भी देखने में आता है, कभी गुस्सा भी देखने में आता है, दूसरे संसारियों का जैसा उदय होता है वैसा ही उदय उनको इसलिए होता है कि पूर्व कर्म तो अज्ञान अवस्था में बंधे थे। जो भी पूर्व कर्म का उदय है उसका निबंधन कब किया, तो अज्ञान अवस्था में किया था, और इसका उदय आया तो जैसे दूसरा अज्ञानी को जैसा उदय आया उसका ऐसा उदय उनको भी आएगा, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी संसारी जीव उसमें बंधन में पड़ता है, ज्ञानी बंधता नहीं है, ये फर्क है। जैसे अग्नि जलाता है गर्म पानी जलाता नहीं है, उससे आग नहीं लगती, बहुत गर्म होवे तो भी आग नहीं लगेगी, गर्म पानी से आग नहीं लगेगी। वैसे ज्ञानी कितना भी रागी द्वेषी मोही दिखने में आवे, कैसा ज्ञानी भक्ति करता है तो तीव्र भाव से भी भक्ति करे कभी भगवान की, इंद्र नाचता है, सौधर्म इंद्र है वो नाचता है। तो पूजा का प्रश्न आया ना, पूजा का प्रश्न तो बहुत प्रसिद्ध है कथानुयोग में। कथानुयोग में क्या होता है कि भगवान का जन्म होता है ना, चतुर्थ गुण स्थान में होते हैं भगवान तीर्थंकर देव, फिर उसको ले जाते हैं इंद्र पांडुशिला पे अभिषेक करने को। तो अभिषेक क्या चीज है, पूजा का एक अंग है, वो भी पूजा है, विध विध प्रकार की पूजा होती है, उसमें अभिषेक भी एक पूजा है, और वहां अभिषेक करके भी पूजा करते हैं अपन, पंचकिलाणक में करते कि नहीं करते। पांडुक शिला पर ले गए भगवान को इधर एक साल पहले, तो फिर वहां पूजा किया कि नहीं किया, अभिषेक के बाद पूजा करने को बैठे कि नहीं इंद्र लोग, बैठे थे कि नहीं बैठे थे। तो चतुर्थ गुण स्थान वाले भगवान की पूजा किया कि नहीं किया ये तो कथानुयोग का विषय है, कथानुयोग में ये चीज तो आती है। और दिगंबर संप्रदाय में तो छेद ढाला है ना, वो तो बहुत मामूली लोग भी कंठस्थ कर लेते हैं वहां तो समाज में, तो इसमें आता है लेशन संयम पर सुरनाथ जजे हैं। चतुर्थ गुण स्थान में लेश संयम नहीं होता, बच्चे को बालक को क्या संयम होता है, पर सुरनाथ में इंद्र भी उसकी पूजा करता है। बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये तो तो ये ज्ञानी को ऐसे राग द्वेष मोह की प्रवृत्ति दिखती है, फिर भी तथापि ज्ञानी पुरुष भी उस ऐसे ज्ञानी की प्रवृत्ति है, तथापि ज्ञानी पुरुष भी निवृत्ति को से भी इच्छता है। वो क्या चाहते हैं, इच्छता है मैंने चाहते हैं कि हमें प्रवृत्ति अच्छी नहीं लगती, बोझा लगता है, निवृत्ति मिल जाए तो अच्छी बात है। वो प्रवृत्ति को नहीं चाहते, यानी निवृत्ति को चाहते हैं। ज्ञानी प्रवृत्ति में भी निर्जरा करते हैं और निवृत्ति में भी निर्जरा करते हैं, लेकिन पसंदगी करनी हो तो किसकी करेगी, प्रवृत्ति की या निवृत्ति की? तो निवृत्ति को पसंद करेंगे, प्रवृत्ति को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अंतर्निवृत्ति वाले को बाह्य निवृत्ति निमित्तभूत होती है, सहकारी कारण होता है। अंतर्निवृत्ति मैंने उपयोग की निवृत्ति हो जानी, स्वरूप में प्रवृत्त हो जाना, इसमें बाह्य निवृत्ति ज्यादा अनुकूल है व्यावहारिक तौर से। ज्ञानी ऐसे ज्ञानी को प्रवृत्ति है, तथापि ज्ञानी पुरुष भी निवृत्ति को किसी कारणवश किसी प्रकार से भी चाहते हैं और प्रवृत्ति में भी उनको पूर्व आराधन किया हुआ, ये अपनी बात लिखते हैं। खुद प्रवृत्ति में थे, व्यापार में लगे हुए थे, 26 साल की उम्र है जब ये चिट्ठी लिख रहे हैं, उस वक्त बम्बई से लिख रहे हैं, तो पूर्व आराधन किया हुआ ऐसे निवृत्ति का क्षेत्र वन उपवन योग सत्संग का समाधि और सत्संग आदि ज्ञानी पुरुष को प्रवृत्ति में बैठे हुए भी बार बार स्मरण में आ जाता है। वो अपनी खुद की बात लिखते हैं, क्योंकि सभी ज्ञानियों को तो पूर्व का आराधन जो है, पूर्व भव का, वो तो जाति स्मरण सबको तो नहीं होता, लेकिन खुद को था। पर खुद ने पूर्व भव में ज्ञान प्राप्ति भी की थी, सत्संग भी बहुत मिला था, और वो वन जंगल में भी जाते थे, जैसे इडर में गए ना, इडर में जो आजकल आश्रम है, वो आश्रम बंधा है, वहाँ जो शिला है जहाँ पर वो ध्यान में बैठते थे, तो उन्होंने ये बताया था कि पूर्व भव में हमको बहुत वैराग्य हुआ था, वो इसी जगह पे हुआ था, इसलिए हमको पूर्व भव का वैराग्य की स्मृति होती है इधर आते ही, और हमारा अभी का वैराग्य भाव बढ़ जाता है। और पूर्व भव में हमें इसी क्षेत्र में सत्संग बहुत मिला था, इसलिए वो सत्संग का भी हमको स्मरण होता है यहाँ आने पर। दो बात उन्होंने इधर के पहाड़ पर किया था, अभी भी बहुत अच्छा क्षेत्र है, हम परसाल गए थे, दो दफे गए थे, बहुत अच्छा, एकदम निर्जन क्षेत्र है। आश्रम में सभी रहने की, खाने की, ठहरने की, सभी प्रकार की व्यवस्था बढ़िया है, अच्छी व्यवस्था है, लेकिन उतना निर्जन स्थल है कि जिसको एकांत में रहना है और स्वाध्याय करना है, उनके लिए तो ऐसा क्षेत्र कहीं मिले नहीं, ऐसा अच्छा क्षेत्र है। चारों ओर पहाड़ी पहाड़ियाँ हैं, और ये भी चढ़ने में 15 मिनट में तो आदमी ऊपर चल पहुँच जाता है, इतना बड़ा ऊँचा नहीं है, और बिल्कुल निर्जन क्षेत्र है। हाँ, ये यहाँ का फोटो, ये इधर का है, अभी तो यहाँ मकान बन गया, इधर उत्तर गुजरात तारंगा के बगल में है, तारंगा जाया जाता है, वहां से 55 किलोमीटर तारंगा है, हम गए थे तारंगा दर्शन करने, सिद्ध क्षेत्र है, लेकिन ये इधर से जाया जाता है अहमदाबाद से, ये दहेगाम और प्रांतिज और हिम्मत नगर लाइन, अहमदाबाद हिम्मत नगर लाइन है, खेड़ ब्रह्मा लाइन जिसको कहते हैं, और उस साइड में उदयपुर भी जाया जाता है नाथ द्वारा, बीच में ये इधर आता है। क्या कहते हैं कि ज्ञानी को भी पूर्व आराधित किया हुआ निवृत्ति के क्षेत्र वन उपवन योग समाधि सत्संग प्रवृत्ति में बैठे हुए भी बार बार स्मरण में आता है, तथापि उदय प्राप्त प्रारब्ध को ज्ञानी अनुसरण करते हैं। जो भी उदय प्राप्त प्रारब्ध है उसमें प्रवृत्ति करते हुए दिखने में आते हैं। सत्संग की रुचि रहा करती है, ज्ञानी को भी सत्संग की रुचि बहुत रहती है। उसका लक्ष्य रहता है कि कभी सत्संग मिले, दूसरे ज्ञानी मिले या मुमुक्षु अच्छे उच्च कोटि के मिलते हैं तो उनको ठीक लगता है। फिर भी यह समय अभी नियमित नहीं है, यानी मैं कह नहीं सकता हूँ कि आप लोगों के बीच में सत्संग कब होगा, ऐसा कोई मैं नियमित रूप से नहीं कह सकता हूँ। कोई हमारा उदय का प्रकार ऐसा है कि थोड़ी व्यापार कामकाज का कमी होते ही वो निकल जाते थे, 15 दिन, महीना, 2 महीने के लिए वो व्यापार से अलग हो जाते थे। निवृत्ति क्षेत्र में मुमुक्षुओं के साथ सत्संग में वो समय निर्गमन करते थे, लेकिन नियमित रूप से वो नहीं कर पाते थे। ये पहला पोस्ट कार्ड यहाँ पूरा हुआ है। फिर लिखने का भाव चालू रहा है तो वो दूसरे पोस्ट कार्ड में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। उसमें दर्शन मोह की भी बात लिखी है और चारित्र मोह की भी बात लिखी है और किस किस प्रकार का प्रतिबंध जीव को होता है उस विषय में बहुत सुंदर मार्गदर्शन जो है वो दूसरे पोस्टकार्ड में दिया है। तो ज़रा विस्तार से इस बात को कर लेंगे। मैंने ये पत्र बहुत अच्छा है, कई मुमुक्षुओं को उपयोगी बातें इस पत्र में आई हैं। आज का तो उसमें हुआ, आगे कल चलें। उस कारण को बार बार विचार करके मिटाना चाहिए और इस प्रकार से मार्ग को अनुसरण किए बिना कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। बहुत सीधी सादी बात है कि अपने परिणाम में आत्मकल्याण में बाधक कारण जो भी है उसको हमें बार बार विचार करके उस कारण को मिटाने के लिए उपाय करना चाहिए। प्रतिबंध को हटाए बिना कल्याण के मार्ग में हम आगे बढ़ सकेंगे नहीं या प्रवेश पा सकेंगे नहीं। उस प्रकार से अनुसरण किए बिना मुमुक्षु जीव को उस प्रकार से अनुकरण करना चाहिए। तो उसका मतलब ये हुआ कि मुमुक्षु जीव को प्रतिबंधक कारण मैंने अपने में जो स्वच्छंद आदि दोष है और मुमुक्षुता का अभाव है, ये प्रतिबंधक कारण है, उसको विचार करके ओके जैसे मिटे वैसे ઉપાય કરકે ઉસી લાઈન સે હમે આગે બઢના ચાહીએ. ઉસ પ્રકાર સે માર્ગ કો અનુસરે બિના કલ્યાણ કી પ્રાપ્તિ નહીં હોગી. અબ વો કારણ કા પ્રકાર કૈસા હૈ વો બતાતે હૈ. કિસ પ્રકાર કા કારણ હોતા હૈ, પ્રતિબંધક કારણ કિસ પ્રકાર કા હોતા હૈ. એક તો મલિનતા, મળ, મલ મેને મલિનતા, મેલાપન. દૂસરા વિક્ષેપ, વિક્ષેપ મેને જૈસે કોઈ કાર્ય હોતા હૈ, કાર્ય ભંગ હો જાવે તો ક્યા વિક્ષેપ હો ગયા એસા કહેતા હૈ. એસે અપને કાર્ય મેં ભી વિક્ષેપ હોતા હૈ, અડચણ જિસકો કહેતા હૈ, ઓબ્સ્ટેકલ્સ આતા હૈ. और अज्ञान, ये अनादि के जीव के तीन दोष है. अब देखिए ये चालू भाषा में लिया है, शास्त्र भाषा में हम क्या कहते हैं कि मलिनता को हम दर्शन मोह कहेंगे. दर्शन मोह से परिणाम में मलिनता रहती है. विक्षेप है वो चारित्र मोह है, चंचलता आती है उसमें इधर उधर. तो हमारे आत्मसाधन में वो विक्षेप पड़ जाता है, चंचलता से विक्षेप पड़ जाता है, इधर उधर हमारा उपयोग चला जाता है. तो ये चारित्र मोह हो गया. और अज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान को, अज्ञान को. मैंने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र उसको नहीं समझे तो चालू भाषा में ले लिया. चालू भाषा में है कि मल, विक्षेप और अज्ञान, ऐसा लिया. वे अनादि के जीव के त्रण दोष है, तीन प्रकार के ये दोष है वो अनादि से जीव को है. पहले नहीं थे और इस मनुष्य भव में नए उत्पन्न हुए हैं, ऐसा नहीं बना है, अनादि से ऐसा दोष है. ज्ञानी पुरुषों का के वचन प्राप्ति होने से या होने के बाद और इसका यथा योग्य विचार होने से अज्ञान की निवृत्ति होती है. देखिए सबसे पहले कौन साधन लिया? ज्ञानी पुरुष के वचन की पर यथार्थ विचार करना, यथा योग्य विचार करना, ये पहला साधन लिया. ज्ञान प्रधान बात लिया. क्या हमें मल, विक्षेप और अज्ञान को मिटाना है तो ज्ञानी पुरुष के वचन की प्राप्ति करके, प्राप्त करके उस पर यथा योग्य विचार करना. यथा योग्य विचार करना मैंने क्या कि हमको कौन सी बात हमारे सुधार में, आत्मकल्याण में हमें कौन सी बात लागू होती है, हमारे परिणमन में ये बात कैसे हम लागू कर सकते हैं और हमें लागू होती है कि नहीं होती है, ऐसा अपने आप को मुख्य करके, अपना हित को मुख्य करके ज्ञानी पुरुष के वचनों का विचार करना, यही यथा योग्य विचार है. और इस कारण से अज्ञान की निवृत्ति होती है, यानी अज्ञान का नाश होता है. ज्ञानी पुरुषों के, पुरुष के वचनों में बहुत सी बात आती है तो सभी बात एक जीव को या हमको लागू नहीं होती है. क्यों कि उपदेश में तो विभिन्न प्रकार का उपदेश में बहुत विशालता होती है, बहुत सी बातें आएगी तो सभी बातें एक जीव को या हमको लागू नहीं होती. और एक बात भी सबको लागू हो जाए ऐसा भी नहीं बन सकता। तो यहां पर इसलिए यह शब्द प्रयोग किया है कि यथा योग्य विचार करना, यथा मैंने जहां जिसको जैसे लागू होता है वहां उसको वो अंगीकार करे। आत्मसिद्धि में ऐसी गाथा लिया है कि जहां जहां जे जे योग्य छे तहां समझवू ते, त्या त्या ते ते आचरे आत्मार्थी जने। आत्मार्थी मैंने क्या है कि जिसमें जिसको प्राप्ति का प्रयोजन है और एकमात्र वो प्रयोजन है या मुख्य प्रयोजन एक ही है उसी को आत्मार्थी कहते हैं। तो ऐसा आत्मार्थी क्या करते हैं कि जो दोष अपने में है वो ज्ञानी पुरुष को का वचन से उसको ध्यान में आता है, अपने आप अगर ध्यान में नहीं आया तो, और उसका सुधार कैसे करना उस बात को समझने की कोशिश करता है और उसको अंगीकार भी कर लेता है, उसी को आत्मार्थी कहते हैं। ज्ञानी पुरुष के वचन की प्राप्ति होने के बाद इसका यथा योग्य विचार होने से अज्ञान की निवृत्ति होती है। वह अज्ञान की संतति बलवान होने से और इसका रोध मैंने प्रतिबंध उसको रोध मैंने उसका नाश करना, उत्पन्न नहीं होने देना, उसको रोध कहते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध होने के कारण और प्रतिरोध होने के हेतु और ज्ञानी पुरुष के वचनों को यथा योग्य विचार हो सके उसी हेतु, उस हेतु से मौल और विक्षेप को मटाड़ना चाहिए। क्या कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष के वचन भी मिलेंगे लेकिन उसका यथायोग्य विचार होने में बाधा आती है, तो किस चीज की बाधा आती है? मलिनता की और विक्षेप की बाधा आती है। जैसे हम कहेंगे कि हम तो ज्ञानी पुरुष के वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, बात भी करीब करीब समझ में आती है, परंतु इसकी असर जितनी होनी चाहिए इतनी हमको असर नहीं होती है, ये शिकायत रहती है कि बात तो अच्छी लगती है, अच्छी लगती है इसलिए बार बार सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, फिर भी हमारे परिणमन पर इसकी असर उतनी नहीं आती है। ऐसा जब लगता है इसका कारण क्या, तो इस कारण का स्पष्टीकरण दिया है कि अज्ञान की संतति बलवान है। एक तो अज्ञान है वो भी बलवान अज्ञान है, मामूली अज्ञान नहीं है, अनादि से अज्ञान है ना, तो उसका जो संस्कार है अज्ञान का विपरीत संस्कार है आत्मा में वो भी बहुत दृढ़ है। इसलिए ये अज्ञान का रोग है, ये क्रॉनिक डिजीज है। क्रॉनिक डिजीज में क्या हो, लंबा काल से जो रोग घर कर जाता है उसको क्रॉनिक कहते हैं, वो जल्दी से नहीं निकलता। रोग का तीव्र हमला आता है ये तभी भी, विज्ञान में भी दो प्रकार के रोग की परिस्थिति होती है। जो एकदम हमला होता है उसको एक्यूट कहते हैं, एक्यूट पोजीशन में है ये रोग। जैसे किसी को बुखार होता है तो सीधा 105 डिग्री हो जावे और डॉक्टर इसको इंजेक्शन वगैरह दे करके 99-100 में ले आते हैं, तो 105 को कम करने का आसान है लेकिन ज्यादा काल तक 99, 99.5, 100 डिग्री जो रहता है उसमें उसको निकालने के लिए डॉक्टर को भी पसीना आ जाता है कि ये जल्दी से हटता नहीं है। ऐसे तीव्र कषाय होता है तो उसमें से मंद कषाय में आना आसान है, पाप परिणाम पलटकर पुण्य के परिणाम होना आसान है। क्रोध जल्दी हो जाता है उसका शांत होना आसान है, लेकिन तीव्र कषाय में से मंद कषाय में आया, वो मंद कषाय छोड़कर वितरागता में कषाय के अभाव में आना, ये उतना आसान जितना तीव्र कषाय से मंद कषाय होना आसान है, उतना मंद कषाय मिट करके कषाय का अभाव रूप वितरागता हो जाए वो उतना आसान नहीं है। ऐसे अज्ञान भी है वो बलवान है और उसका नाश करना, विरोध करना, मैंने उत्पन्न नहीं होने देना, निरोध, जिस पर क्या रोध में से शब्द आया है निरोध, उत्पन्न नहीं होना, उसको रोध कहते हैं या निरोध कहते हैं। उसका निरोध होने के अर्थ और ज्ञानी पुरुष के वचनों का यथायोग्य विचार होने के लिए, क्या ज्ञानी पुरुष का वचन तो मिलते हैं लेकिन इसका यथायोग्य विचार होना ये एक महत्वपूर्ण घटना है, ये बात मामूली नहीं है। पुण्य योग से ज्ञानी पुरुष के वचन मिल जाते हैं, योग भी मिल जाते हैं ज़्यादा पुण्य होता है तो, लेकिन इस वचन को आत्मा में परिणमित करने के लिए, अंगीकार करने के लिए, अंतर में उतारने के लिए उसका यथायोग्य विचार होना चाहिए। विचार होना चाहिए, उतना नहीं लिया है। विचार शक्ति होती है तो थोड़ा बहुत विचार जिसकी जितनी शक्ति है उतना करता है, लेकिन यथायोग्य विचार करने का मतलब क्या, कि उस प्रकार से ये विचार में ग्रहण होवे कि जिससे हमारा जो दोष है स्वच्छंद आदि जो है, या दर्शन रूप मल है, या उपयोग की चंचलता रूप विक्षेप है, उसमें भी फर्क पड़े, या उसमें फर्क पड़ने से यथायोग्य विचार भी होवे, ये एक दूसरे के पूरक कारण है। जिसका दर्शन मोह का अनुभाग घटता है और जिसको चंचलता भी कम होती है, उसको यथायोग्य विचार करने की क्षमता प्राप्त होती है, और जिसको विचार यथायोग्य विचार करने की थोड़ी बहुत क्षमता है और यथायोग्य विचार करता है तो इससे मल और विक्षेप में हानि अवश्य होती है। ऐसा एक दूसरे को आपस में कारण बनता है जी। हाँ नहीं तो उसको क्या, इसके लिए तो बोला कि यथायोग्य विचार करने के लिए मौल और विक्षेप को मटाड़ना चाहिए, मल और विक्षेप में फर्क होना चाहिए। तो मल और विक्षेप मिटने का कौन सा कारण है, कैसे मल और विक्षेप मिट सकता है, इसका उपाय भी दिखाते हैं। इधर उन्होंने चारों ओर से बात को अच्छी तरह प्रतिपादन किया है। ये तो एक पोस्टकार्ड है, कृष्णदास भाई पर का एक मुमुक्षु भाई पर एक पोस्टकार्ड दिखा है, 8 पोस्टकार्ड लिख दिया है, एक पीछे विषय चालू रह गया विचारधारा में और लिखने की वृत्ति चालू रह गई तो एक पीछे 8 पोस्टकार्ड लिखा है। एक ही मुमुक्षु को लिखा है इसलिए संकलन में एक साथ एक पत्र गिना दिया है, लेकिन आखिर में आखिर के पोस्ट कार्ड में लिखा है कि आज ये आठवां पत्ता लिखते हैं, पहली पंक्ति है। तो ये जो अपने चलता है वो दूसरा पोस्ट कार्ड चलता है, उसमें वो बात आई है कि मुमुक्षु थे, काफ़ी पात्रता वाला मुमुक्षु था कृष्णदास भाईकर का। जो उसका पत्र व्यवहार हम देखते हैं, आगे पीछे का पत्र देखते हैं, तो वैराग्य संपन्न, ये तो उन्होंने संबोधन में ही लिखा है, वास्तव में वो वैराग्य संपन्न थे, और वैराग्य संपन्न ऐसा विशेषण लगाया है। तो ऐसा वैराग्य वाला जो मुमुक्षु है उनको अधिक मार्गदर्शन देने के लिए जो विकल्प उठा चला है उसमें आठ पोस्टकार्ड लिख दिया है एक ही दिन। तो इस दूसरे पोस्टकार्ड में आत्मकल्याण के विषय में बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलता है हमें। इधर ऐसा है कि आत्मकल्याण को मैंने आत्महित को केंद्र स्थान में रख करके सब बातों का विचार करना। उपदेश में ज्ञानी पुरुष के वचनों में बहुत सी बात आती है, उसमें मेरा आत्मकल्याण कैसे हो इस विषय को केंद्र में रख करके, आत्महित को केंद्र बिंदु बना करके सभी बातों का विचार करना है। तो इसमें क्या होगा कि प्रयोजन भूत मुझे कौन सी बात है उस पर दृष्टि जो है वो सूक्ष्मता से काम करेगी, और जो भी बात हमें प्रयोजन नहीं है वो गौण हो जाएगी। ऐसे शास्त्र में भी ऐसा है कि हम शास्त्र पढ़ते हैं या ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें तो विस्तार बहुत होता है उपदेश का, तो जिसको आत्महित का तीव्र प्रयोजन का दृष्टिकोण रहता है उसको अपने काम की बात है वो चौंट जाती है, और उस बात को वो ग्रहण करके अपना परिणमन को सुधार कर लेता है। वरना बातें तो सभी अच्छी हैं, ज्ञानी पुरुषों की या शास्त्रों की सभी बातें अच्छी ही होती है, कोई बुरी बात तो करते नहीं वो, होती भी नहीं, लेकिन सभी अच्छी हैं, इसमें मुझे किस काम की है, कौन सी बात मुझे काम में आने वाली है, उस पर अच्छा अच्छी तरह ध्यान रहना चाहिए, लक्ष्य रहना चाहिए, और ऐसा लक्ष्य रहे ऐसा दृष्टिकोण अपने पास होना चाहिए, जब ही उसका यथायोग्य विचार होता है, वरना यथायोग्य विचार नहीं होता है। तो ऐसा यथायोग्य विचार करने के होने के लिए मल और विक्षेप भी मटाड़ना चाहिए, और मल और विक्षेप मिटने का साधन कौन सा है ये बात करते हैं कि एक तो सरलपना। देखिए क्या बात लेते हैं, सरलपना, जैसा मन में है वैसा ही कहें, मन में है ऐसा ही वचन में हम कहें, मन में कुछ है कुछ छिपावें या अन्यथा कहें, इसमें सरलपना नहीं है। ये मुमुक्षु की भूमिका में सबसे कोई अच्छा गुण है मार्ग प्राप्ति के लिए, ये सरलपना है। सरलपना से विपर्यास कम होता है, समझने भी ज्ञानी पुरुष के वचन को यथार्थ रूप से विचार करने में जितनी सरलता है उतना विपर्यास कम होने की गुंजाइश है, और सरलपना नहीं है તો મતિ વિપર્યાસ હોને કી બહોત સંભાવના રહેતી હૈ. ઇસલિયે સરલપના વો સબસે અચ્છા ગુણ હૈ. वो असरलता है. पूर्वग्रह का नहीं छूटना ये भी असरलता का एक प्रकार है. जिद्द होना, पूर्वग्रह नहीं छूटना, ये जो सब है वो असरलता का प्रकार है. जब हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमें हमारा आत्मकल्याण करना है, इसका मतलब कि अभी तक हमने हमारा कल्याण नहीं किया है, तो इसके लिए कोई पूर्व जो भी अभी तक हमने ग्रहण किया है उसकी पकड़ रह जाएगी, तो जो सही बात है उसके लिए अवकाश नहीं रहेगा. इसलिए ज्ञानियों की हमेशा यही सूचना रही है कि जिज्ञासा में रहना. क्या जिज्ञासा का मतलब क्या है? ओपन माइंडेड जिसको कहते हैं, कि हम हमारा मन को खुला रखते हैं जो सत्य है और आत्महितकारक है, उसे हमें विदाउट एनी प्रेजुडाइस हमें तो ग्रहण करना है, हमें तो हमारा कल्याण करना है. इसलिए हमें कोई आगे पीछे वाली बात पकड़ में नहीं रखनी है जो आत्मकल्याण की बात को आने नहीं दे, ग्रहण होने नहीं दे. ऐसा हमें हमारे में कुछ बलन नहीं होना चाहिए. ऐसा जिज्ञासा में, मध्यस्थ भाव में, सरल भाव में रहना ये मुमुक्षु के लिए हित का कारण रहता है. सरलपना, क्षमा. क्षमा मैंने अपन कहते हैं ना, छोड़ देना बात को, छोड़ देना, पकड़ में नहीं रखना. यानी कोई ऐसी बात नहीं होनी कि क्यों ऐसा दोष करता है सामने वाला, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए. इनकी योग्यता ऐसी है, हम क्या करें. हमें तो हमारा दोष निकालना है, मुख्य बात तो हमारे लिए वो है. इसलिए सरलपना रखना, क्षमा रखना, अपना दोष का अवलोकन करना, देखना मैंने अवलोकन करना, विचार करना, ऐसा नहीं लिया देखो ये बात सुबह चली थी थोड़ी, कि विचार करने में तो जो दोष व्यतीत होता है उनका विचार चलता है, और जो दोष चालू है उसको हम देख सकते हैं. तो जो व्यतीत हो गए उसके रस में तो हम फर्क नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हो गए सो हो गए. और जो दोष उत्पन्न हुआ उसी वक्त उसको अगर हम देखते हैं तो उसका रस है वो टूट जाएगा. इसलिए अपने दोष को, अपना दोष को देखना, अवलोकन करना, और अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह. मुमुक्षुओं को अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह होना चाहिए. कैसे? कि आर्थिक परिस्थिति तो पूर्व कर्म के अनुसार होती है हर एक को, लेकिन जिसको आत्मकल्याण करने का अपने जीवन में एक ध्येय किया हो तो जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उनको बहुत पैसा ज़्यादा मिलाना है, वो शुरू से ही नहीं है तो अपना तो एक व्यवहार चल जाए आजीविका का, गृहस्थी का, तो इससे ज़्यादा हमें कोई इकट्ठा करने का प्रयोजन नहीं है। तो फिर वो बहुत आरंभ समारंभ में या परिग्रह में नहीं जाएगा। अब किसी को पुण्य योग से ज़्यादा पैसा आ गया है, ज़रूरत से भी ज़्यादा है, ऐसी आर्थिक स्थिति जिसकी अच्छी है, तो उनको क्या करना चाहिए कि उनको इस प्रवृत्ति में से निवृत्ति लेने का मुख्यतया प्रयास कर लेना चाहिए। अगर परिवार में ज़्यादा सदस्य हो और वे इस प्रकार के अपने कारोबार को समेटने में सहमत नहीं भी हो तो उनको सौंप देना चाहिए कि तुम कर लो, मेरा तो भाव नहीं है, मेरा तो मनुष्य आयु अपने कल्याण में व्यतीत करने का मेरा तो अभिप्राय है, मैं सिर्फ बाह्य संयोगों को बढ़ाने में अपना मनुष्य आयु को गुजारना नहीं चाहता, इतनी कीमत मेरे मनुष्य आयु की नहीं है कि हम संयोग के पीछे पूरा का पूरा हमारा आयु का खर्च कर दे, ये तो इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है, उसमें कोई विचारशीलता नहीं है, ये तो एक मनुष्य भाव खो देने की मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में दो से एक होगी, या मध्यम कक्षा की तीसरी पकड़ लो तो ठीक है, इसमें से भी जितना भी आरंभ परिग्रह का संक्षेप होवे उतना करके समय की निवृत्ति लेकर के अपने आत्मकल्याण में अपनी शक्ति का उपयोग करना, यही हमारे लिए श्रेष्ठ है। ऐसा कब कर सकते हैं, कैसे होता है कि जब आत्मकल्याण का निर्धार कर लिया हो तो, कि जीवन में आत्मकल्याण कर लेना ही है, चाहे जैसी परिस्थिति में भी हमें हमारा आत्मकल्याण का प्रयास चालू रखना है और करना ही है। ऐसा जब हमारा निर्धार है तो किसी भी परिस्थिति में हम काम थोड़ा बहुत कर पाएंगे। अगर ऐसा निर्धार नहीं है तो परिस्थिति तो खुली है जगत में कि लोग संयोग के पीछे कितनी दौड़ लगाते हैं और रात दिन भले ऑफिस में 6 घंटा बैठे, 5 घंटा बैठे या 8-10 घंटा बैठे, लेकिन 24 घंटा परिणाम तो इसमें ही लगे रहते हैं। आज हमारे घर में दाना पानी की कमी नहीं है, आज क्या कल के लिए भी कोई तकलीफ नहीं है, 6 महीने के बाद भी कोई तकलीफ नहीं है, 3 साल के भी बाद कोई तकलीफ आने वाली नहीं है, फिर भी भविष्य की चिंता हमारा वर्तमान को बिगाड़ देती है। जिस वर्तमान में हम आत्मकल्याण के लिए कोई कदम उठा सकते हैं, ऐसा महत्वपूर्ण वर्तमान समय है, उसको भविष्य की चिंता में हम खो देते हैं या बिगाड़ देते हैं। ये परिस्थिति संपन्न घराने में होती है तो दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे का तो अफसोस करना भी नहीं चाहिए। इसलिए कृपालु देव ने आगे एक बात वो कर चुके हैं कि मुमुक्षु तो वो है कि जिसको दृढ़ मोक्षेच्छा बन गई है या वर्तती है, दृढ़ मोक्षेच्छा, परिपूर्ण शुद्ध होना મોક્ષ કહ્યો નિજ શુદ્ધતા, પરિપૂર્ણ મોક્ષ, પરિપૂર્ણ શુદ્ધિ, પરિપૂર્ણ આત્મકલ્યાણ, જન્મ મરણ કા નાશ હોના, એસી દૃઢ ભાવના હુએ બિના આગે કા કોઈ કામ ચલને વાલા નહીં હૈ. યે નીવ કા કામ હૈ. એસી નીવ ડાલે બિના એક કદમ ભી યથાયોગ્ય વિચાર નહીં હો પાયેગા. ઉપર ઉપર સે તો અનંત કાલ મે બહુત કિયા હૈ, યથાયોગ્ય રૂપ સે કુછ નહીં કિયા હૈ. તો યથાયોગ્ય રૂપ સે હુએ ઇસકા મતલબ કે ક્રમ વિપર્યાસ નહીં હુએ. યે બાત ઇસમે આ ગઈ. યે શબ્દ અલગ અલગ હૈ. યથાયોગ્ય મેને ક્રમ કા ભી વિપર્યાસ નહીં હોના ચાહીએ, ઉસકો યથાયોગ્ય કહેતે હૈ. તો યે સરલપના, ક્ષમા, અપના દોષ કો દેખના, અલ્પ આરંભ ઓર અલ્પ પરિગ્રહ વગેરે મલ મિટને કા સાધન હૈ. મેને દર્શન મોહ કા અનુભાગ તૂટને કા યે કારણ હૈ. બુદ્ધિ તો હૈ હમ લોગો મેં, બુદ્ધિ નહીં હૈ એસે નહીં. બુદ્ધિજીવી તો હમ લોગ બોલે જાતે હૈ, દિમાગ સે તો કામ લેતે હૈ જીવન મેં, ઓર અપને અપને પ્રયોજન મેં કાફી દરકાર ઓર સાવધાની સે કામ કરતે હૈ. લેકિન બુદ્ધિ મેં મલિનતા હૈ, યહી હમારા આત્મકલ્યાણ કા રાસ્તા કો પ્રતિરોધ કા કારણ કરતી હૈ. યે મલિનતા હૈ વો આત્મકલ્યાણ કો પ્રાપ્ત હોને નહીં દેતી. યે મલિનતા ઘટને કે લીએ મેને દર્શન મોહ ટૂટને કે લીએ ઘટને કે લીએ યે સભી પ્રકાર કે વગેરે મેને બહોત સે પ્રકાર હૈ. યે તો પ્રત્યક્ષ સમાગમ મે જ્ઞાની પુરુષ કા અગર મિલ ગયા તો બહોત સી બાતે સમજ મે આતી હૈ, વરના મોટી મોટી બાત તો પત્ર મે ભી, પોસ્ટકાર્ડ મે ભી કિતના લિખે. ઓર જ્ઞાની પુરુષ કી અત્યંત ભક્તિ યહ વિક્ષેપ મિટને કા સાધન હૈ. ચંચલતા મિટ જાયે. જો ચારિત્ર મોહ કે તીવ્ર પરિણામ હોતે હૈ વો જ્ઞાની પુરુષ કી સહેજ રૂપ સે મિટતી હૈ. જ્ઞાની પુરુષ કી ભક્તિ તો બહોત હાસ્ય હૈ. જ્ઞાની પુરુષ કોણ હૈ? જિસકો દર્શન મોહ કા અભાવ હુઆ હૈ. કોણ હૈ જ્ઞાની પુરુષ? જિસકો મિથ્યાત્વ નહીં હૈ, મેને દર્શન મોહ કા અભાવ હુઆ હૈ. મોહ રહિત પુરુષ કો હમ જ્ઞાની પુરુષ કહેતે હૈ. મોહ રહિત તો જિસને દર્શન મોહ કા અભાવ કિયા, એસા કોઈ અપૂર્વ પુરુષાર્થ કા પરાક્રમ જિસને કિયા હૈ, એસે પુરુષ કા બહુમાન હોના ઓર દર્શન મોહ કા અભાવ હોને સે આત્મગુણ જિસને પ્રગટ કિયે હૈ, સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર ઓર અનંત ગુણ કી પવિત્રતા કો જિસને પ્રગટ કર દી હૈ, ઓર સાક્ષાત પરમાત્મા કા સાક્ષાત દર્શન કિયા હૈ, એસે જ્ઞાની પુરુષ કા બહુમાન હોને મે દર્શન મોહ ભી ઘટતા હૈ. ભક્તિ મેને બહુમાન, ભક્તિ સામાન્ય તોર સે તો રાગ કી પર્યાય ગિની જાતી હૈ, સમજી જાતી હૈ. લેકિન વાસ્તવ મે ભક્તિ જ્ઞાન કી પર્યાય હૈ. ક્યો? કે જ્ઞાની પુરુષ કા જ્ઞાન જિસ બહુમાન કા કારણ હોતા હૈ, ઇસલિયે ઉસકો જ્ઞાન કી પર્યાય કહેતે હૈ. ક્યા? જ્ઞાની પુરુષ કા જ્ઞાન હુઆ તો બહુમાન હુઆ ને, તો જ્ઞાન હુઆ વો જ્ઞાન કી પર્યાય હુઈ, ઓર ઇસકા ફલ બહુમાન હૈ. બહુમાન મેને ભક્તિ, ભક્તિ મેને બહુમાન, તો જ્ઞાન કી પર્યાય હૈ મૂળ મે. લેકિન હમારા ધ્યાન જ્ઞાન પર નહીં હૈ, રાગ પર હૈ, ઇસલિયે હમે રાગ કી પર્યાય નજર આતી હૈ, જ્ઞાન કે પર્યાય નજર નહીં આતી. તો ઇસ પ્રકાર સે જ્ઞાની પુરુષ કા બહુમાન જિસકો હોતા હૈ, ઉસકો દર્શન મોહ કા અનુભાગ ભી બહોત આસાની સે ટૂટતા હૈ, ઓર ઉસકો ચારિત્ર મોહ ભી શાંત હોતા હૈ, વિક્ષેપ ભી મિટતા હૈ. ઇસલિયે જ્ઞાની પુરુષ કી ભક્તિ કો રહસ્ય ભક્તિ કહેને મેં આતી હૈ. અબ ભક્તિ કા પ્રકરણ કા અગર હમ વિચાર કરે કે ભક્તિ કે કિતને પ્રકાર હૈ, ઓગ ભક્તિ કો ભી ભક્તિ કહેતે હૈ, ઓર પહેલ પૂર્વક કી ભક્તિ કો ભી હમ સચ્ચી ભક્તિ કહેતે હૈ, ઓર ઉસી સે ઉસમે જો આત્મહિત કા રહસ્ય હૈ, ઓ રહસ્ય કા પ્રાપ્તિ હુઆ, આત્મકલ્યાણ હોતા હૈ, ઉસકો રહસ્ય ભક્તિ કહેતે હૈ. ઓર જિસ ભક્તિ મેં કોઈ અપેક્ષા નહીં હૈ, ઉસી કો ભી રહસ્ય ભક્તિ કહેતે હૈ. એ શબ્દ કૃપાળુ દેવને આગે કુછ નરસિંહ મહેતા વગેરે કે બારે મેં લિખા હૈ કે ઉન લોગો કો રહસ્ય ભક્તિ થી, મતલબ વો ભક્તિ કરને કે બાદ ભક્તિ કે પરિણામ કે સામને કુછ માંગતે નહીં થે, અપેક્ષા નહીં રખતે થે કે યે ભક્તિ કા મુજે કુછ એસા ફલ મિલે તો ઠીક હૈ. નિષ્કારણ નિરપેક્ષ સિર્ફ અપના આત્મકલ્યાણ હોવે ઉતના હી ઇસમે અભિપ્રાય હૈ, ઉસકો રહસ્ય ભક્તિ કી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ. વો રહસ્ય હૈ ખુદ આત્મકલ્યાણ. તો યે દર્શન મોહ ઓર ચારિત્ર મોહ, મોહ કો મારને કે લિયે સુગમ સે સુગમ કોઈ સાધન હૈ, તો યે જ્ઞાની પુરુષ કી ભક્તિ કા સાધન હૈ. ભક્તિ કા મતલબ યે નહીં કે દો પદ ગાવે હો ગઈ ભક્તિ, યા ગાતે વક્ત જ્યાદા બાજા બજાવે તો હો ગઈ ભક્તિ, યે ભક્તિ કા સ્વરૂપ નહીં. અંતર મેં સે બહુમાન હોના, ગુણ કા બહુમાન હોના, આત્મા કા બહુમાન હોના, કે આત્મા તો ગુણ નિધાન હૈ, એસે ગુણો કા બહુમાન હોતા હૈ, ઉસી કો ભક્તિ કહેતે હૈ, ઓર વો જ્ઞાન કી પર્યાય હૈ. રાગ તો ઇસકે પીછે અનુસરણ કરકે ચલતા હૈ, ઇસલિયે ઉસમે રાગ શામિલ હો જાતા હૈ, લેકિન મૂળ મેં ઇસકા કારણ તો પહેચાન હૈ ઓર જ્ઞાન હૈ. ઓર ઉસ મોહ કો મારને કે લિયે સબસે બડા સાધન હૈ. ઇસલિયે કૃપાલુ દેવ કે વચનો મેં ભક્તિ કા વિષય ઓર ખાસ કરકે સત્પુરુષ કી ભક્તિ કા વિષય, ઓર ઉસમે ભી ખાસ કરકે વિદ્યમાન સત્પુરુષ કી ભક્તિ કા વિષય ઉપર કાફી વજન દિયા હુઆ હૈ, ઓર યે કેવલ મુમુક્ષુ કે હિત કે લિયે નિષ્કારણ કરુણા સે યે બાત કહી હૈ. કહીં ભી અપને અબ મેં સત્પુરુષ હું ઇસલિયે ભક્તિ કરના ચાહિયે, એસા ટોન અંડર ટોન એસા ધ્વનિ કહીં ભી નહીં મિલતા હૈ. યે ખુદ સત્પુરુષ હોતે હુએ ભી સત્પુરુષ કી ભક્તિ કા પ્રતિપાદન કરને મેં સબસે કોઈ અચ્છા મેને નિર્દોષ પ્રતિપાદન હુઆ હૈ, ઇસકા યહી કારણ હૈ. વરના તો લોગ આરોપ કર લે કે અપને કો માન ચાહિયે ઇસલિયે વો એસા કહે રહે હૈ, એસા ઘટા લેતે હૈ, લેકિન ઉનકે પ્રતિપાદન મેં ઉતની નિર્દોષતા થી, ઓર જો મુમુક્ષુ इनके समीप में आए, वो भक्ति करने लगे, तो उनके लिए उन्होंने ये बोला कि मैंने सतपुरुष का बहुमान करने को लिखा तो आप लोगों ने मुझे ही निशान बना दिया क्या, और मुझे बंधन में डाल दिया क्या, इसलिए तो मैंने ऐसी बात नहीं की है। ऐसा भी उन्होंने स्पष्टीकरण इस विषय में दे दिया है। वो कौन से पत्र में है, वो पेज नंबर 268 है, 268, उस पर ये बात आई है। पत्रांक है 212 नीचे 268 पेज के सबसे नीचे पैराग्राफ है। तमे बधाए हाल तो एक प्रकारनो अमने बंधन करवा माइंडियो छे, थप्पो आपे छे मुमुक्षुओने। पत्र छे त्रिभुवन माणिकचंद खंभात, त्रिभुवन भाई वगैरह तीन भाई थे, माणिकचंद भाई, छोटालाल भाई और त्रिभुवन भाई माणिकचंद भाई के तीन पुत्र थे। वो इनके परिचय में आए हुए थे, बहुत भक्ति बहुमान करते थे, तो भी कितना ठपका लिखते हैं देखो कि तमें बधाए हाल तो एक प्रकारनो अमने बंधन करवा माँड्यू छे, ते माटे अमारे शू करवू ते कहीं सूझतू नथी। કેમ કે સત્પુરુષની ભક્તિ કરતો કરે તો ભક્તિ કરનારને તો લાભ થાય છે, અને ભક્તિ જેની કરે છે એને ભક્તિ જોઈતી નથી, હવે કરવું શું, કે સૂજ મને સૂજતું નથી, કે શું કરવું તે કાંઈ સૂજતું નથી। સજીવન મૂર્તિથી માર્ગ મળે એવો ઉપદેશ કરતા પોતે પોતાને બંધન કર્યું છે, કે જે ઉપદેશનો લક્ષ તમે એમાં અમારા ઉપર જ માંડ્યો, અમને નિશાન બનાવી દીધા તમે તો આ ઉપદેશ સાંભળીને। અમે તો સજીવન મૂર્તિના દાસ છીએ, ચરણ રજ છીએ। શું કીધું પછી, 24 વર્ષે જ્ઞાન હો ગયા કાર્તક મહિને મેં, કે હમકો સત્પુરુષ માન કરકે ભક્તિ મત કરો, हम तो सजीवन मूर्ति का सत्पुरुष का हम तो चरण रज है, हम तो उनका दास है ने, ऐसे ही गिनो आप, हमको मत निशान बनाओ। हमारी ऐसी अलौकिक दशा कहाँ है कि आत्मरमणता हम करें, थी अलौकिक दशा फिर भी ना देते हैं। देखो अलौकिक दशा बहुत थी, ये माह महीने में बहुत से ऐसे पत्र आए हैं, माह फागण में बहुत अच्छे अच्छे पत्र आए हैं, हैं? भक्ति नहीं चाहते थे इसलिए, अपन वो तो इसलिए तो बोलते हैं। देखिए ऐसा है, अपनी विनम्रता को भी प्रदर्शित करते हैं, ये गुणवान पुरुष का गुण है और यही इनकी महानता है कि अपन खुद महान होने पर भी अपने को महान नहीं बताते हैं। हाँ भी ऐसा है कि
ये जो है कि मैं मान रहा हूं,